एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय परमहंस प्रजापाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिनी गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमो शिवाय कृष्ण कृष्ण ओम ज्ञान तिमिरंजस्य ज्ञानाश्वाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दिव्य ज्ञान के ज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी उसका अगला अध्याय पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तीसरे अध्याय का भी शीर्षक क्या है? कर्म योग है। और पंचम अध्याय का भी शीर्षक क्या है? कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो संस्कृत में इसका नाम है कर्म संन्यास। लेकिन इस अध्याय में जो मायावादियों का कर्म संन्यास को खंडन किया गया है, इसलिए ऐसा ना हो जाए कि हम लोग दोनों के बीच में अंतर, सही कर्म संन्यास क्या होता है, कर्म योग में लग के जो विरक्ति या मुक्ति प्राप्त हो जाता है उससे, और ये जो मायावादियों का सांख्य के अनुयायियों का जो कर्म संन्यास है उससे अंतर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर यह शीर्षक दिया गया, कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। और हम लोग देखते हैं तीसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया कि दो मार्ग होते हैं, कर्मयोग और सांख्य योग, ज्ञान कर्म और ज्ञान, ऐसे दो मार्ग होते हैं, या एक्टिव और इनएक्टिव, सक्रिय और निष्क्रिय मार्ग, या दर्शन के मार्ग या अनुष्ठानों का मार्ग, ऐसे अलग अलग नाम हम लोग देखते हैं। वहाँ पर तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग को विशेष करके तो वहां पर भी उन्होंने इसके संबंध में, अभी हमें जानना चाहिए यहाँ पर कितने सारे विषय चल रहे हैं यहाँ पर विशेष करके, तो बेसिकली भगवद गीता में पूरा कितना विषय चलते हैं? पांच विषय वो है, लेकिन यहाँ पर जो जिस मार्ग का वर्णन किया जा रहा है, एक तरफ जो कर्मवादी है वो लोग नियत कर्म करना चाहिए और ऊंचा भोग को प्राप्त करना चाहिए, वो लोग उनका दर्शन है जिसको हम कर्म मीमांस कहते हैं, जैमिनी के अनुयायी, यज्ञवल के जैमिनी वगैरह। दूसरी ओर है कर्म संन्यास, वो लोग इसके एकदम विरुद्ध, एग्जैक्टली अपोजिट एक्सट्रीम, जो मायावादी शंकराचार्य के अनुयायी और जो सांख्य ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, नास्तिक कपिल का, वो लोग कर्म संन्यास लेते हैं। और भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कर्मयोग को समझा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद उसका ऊंचा जो चीज़ है उसको वर्णन करते हैं, भक्ति योग को, कर्म को योग को भक्ति योग ही बोलते हैं, या कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत कहते हैं, क्योंकि अंत में भगवान अर्जुन को उसको करने के लिए बोलेंगे। सिर्फ और एक विरक्त भावना से, त्याग की भावना से कर्म करने के लिए भगवान ने बताया तो है, वो तो बताया, लेकिन अंततो गत्वा कुरुक्षेत्र युद्ध क्या है, वो भगवान का मिशन है, वो भगवान का इच्छा है, वो युद्ध होना चाहिए करके। सिर्फ तो अर्जुन क्षत्रिय है, तो वो क्षत्रिय धर्म को पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध होकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन उससे भी खरे चीज़ क्या है कि वो भगवान चाहते हैं बस। तो वो अंतिम शिक्षा है भगवद्गीता का, इसलिए उसको ज़्यादा जोर देते हैं शिव। समझ में आ गया अभी क्या क्या चल रहा है विषय यहाँ पर? तो इसलिए प्रभुपाद कृष्ण, भगवान कृष्ण इसको कंडन करते हैं, फल से आसक्त जो होते हैं वो कृपण लोग हैं, वो वास्तविक अनुयायी नहीं है वेदों के। और इसका भी वो क्या बोलते हैं, जो कर्म संन्यास लेते हैं अपरिपक्व होकर तुरंत ही संन्यास लेते हैं, उनका भी क्या खतरा हो सकता है उसको भी भगवान ने बताया। तीसरे अध्याय में भी हम लोग देखते हैं ना, न कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। सो न कर्मणाम अनारंभम, कर्म को आरंभ किए बिना ही या न करते करने से ही हम लोग कर्म फलों से मुक्त नहीं होते, नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। संन्यास लेने से ही कर्म, यहाँ पर मतलब सिर्फ संन्यास लेने से ही परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे भगवान तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक हम पढ़ रहे थे। नहीं क्षतिक्षणमपि जातिष्ठत कर्म कृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणय। कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकते एक क्षण भी, क्योंकि जीवात्मा तीन गुणों के प्रभाव में है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते, कैसे मिथ्याचारी हो सकते हैं, ऐसे ये सब चीज उन्होंने बताया। तो और उन्होंने यज्ञार्थात कर्म न अन्य, तो यज्ञ के रूप में इसको कर्म करना चाहिए, इसको कर्म योग कहते हैं। ये लोग यज्ञ के रूप में नहीं करते, वो लोग अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो अपना इंचा बोध प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो एक और उनका कर्मवादी लोग होते हैं। और प्रभुपाद हमेशा कृष्ण के लिए करो, कृष्ण के लिए करो, कृष्ण के लिए करो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्मणा। तो ये सब चल रहा है। फिर से अर्जुन विशेष करके यहाँ पर इस बार अर्जुन पंचम अध्याय में क्या पूछ रहे हैं, कर्म संन्यास के बारे में पूछ रहे हैं। कर्म संन्यास श्रेष्ठ है भाई, तो क्यों मुझे फिर से कर्म करने के लिए बाध्य कर रहे हैं सब कुछ? इसका अर्थ क्या है कि पिछले अध्याय में उन्होंने बताया कर्म वगैरह सब अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ है वो किसमें सिद्धि प्राप्त करती है, किसी को पता है? ज्ञान में। कौन से श्लोक में बताया गया वो पिछले अध्याय का? ज्ञाने ज्ञाने समाप्यति, नंबर 33। क्या बताया गया देखिए, 33। तो अर्जुन उस श्लोक को गलत, उनको उन्होंने गलत समझ लिया। सभी जो यज्ञ है, सभी जो कर्म है, नियत कर्म है या कर्म जो योग है, वो क्या होता है? ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त करती है, ऐसे उन्होंने बताया, अर्जुन कृष्ण ने बताया। तो ज्ञान में परिपूर्णता प्राना है तो क्यों मुझे कर्म में कर्म करना चाहिए? मैं संन्यास लेके वो ज्ञान का अनुशीलन करूंगा ना, ऐसे उन्होंने सोचा। वो कर्म संन्यासी लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमने बताया ना, वो फेमस प्रसिद्ध वाक्य है, वेदांत वाक्येषु सदा रमंतः कोपी नमंतः खलु भाग्यवंतः। सो वेदांत वाक्य में जो रमन करते हैं और कोपिंग धारण करते हैं, मतलब संन्यास ग्रहण करते हैं, वो कलयुग में बहुत ही भाग्यवान लोग, ऐसे शंकराचार्य ने बताया। तो वो लोग कर्म संन्यास लेते हैं ज्ञान को अनुशीलन करने के लिए। तो ज्ञान ही परिपूर्णता प्राप्त करना है, ज्ञान में ही परिपूर्णता प्राप्त करना है सभी कर्मों को करके, क्यों ना मैं संन्यास ले लूं, ऐसे उनका प्रश्न। लेकिन अंत में भगवान क्या बोलते हैं 42वें श्लोक में, गेट ऑफ, ये इस ज्ञान में स्थित होकर, दिव्य ज्ञान में स्थित होकर या संशय रूपी अज्ञान को अपने ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और उठ के खड़े हो और युद्ध करो, ऐसे बोलते वो कैसे हो सकता है? ज्ञान और कर्म साथ में कैसे हो सकते हैं? युद्ध करना और ज्ञान में स्थित होना, ये दोनों कैसे हो सकते हैं, साथ में हो सकते हैं? ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? कर्म संन्यास लेना चाहिए। ऐसे उनका कहना था। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कर्म योग में होते हुए भी कर्म फलों से अनासक्त रह के एक सन्यासी के रूप में भी रह सकते हैं, या वैष्णव ऊंचा ये लेंगे तो प्रिंसिपल लेंगे, सिद्धांत लेंगे तो वो भक्ति का जो सिद्धांत है, आप वैष्णव सन्यासी हो सकते हो, उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, सभी भगवान के सब कुछ मन बुद्धि वाणी शरीर भगवान को समर्पित कर सकते हो। तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हो, युद्ध भी करना है तो कर सकते हो। तो इनको ये जो दो प्रिंसिपल है इनको समझ में नहीं आ रहा, वो बार बार जब ज्ञान बोले तो इस तरफ चले जाते हैं और कर्म बोले तो इस तरफ चले जाते हैं। तो वो अर्जुन का समस्या है। प्रभुपाद जी इस अध्याय के ऊपर, तो इसलिए इस अध्याय में विशेष करके भगवान फिर से इसको वर्णन करेंगे और कैसे ये व्यक्ति इसको पालन करके वो परिपूर्णता को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। तो और इसमें क्या समस्या है इसको वर्णन करेंगे फिर से। पहले वो तीसरे अध्याय में चौथे पांचवे छठे श्लोक में उन्होंने वर्णन किया था कर्म संन्यास का क्या समस्या है, और बारहवें तेरहवें चौदहवें पंद्रहवें सोलहवें श्लोक में इसका क्या समस्या है उन्होंने बताया था ना, वो लोग चोर है, पापी है, क्या क्या है और क्या क्या बताया उस भगवान ने, व्यर्थ ही मोगम पार्थ सजीवती, वो उनका जीवन व्यर्थ ही है, ऐसे भगवान इसको खंडन कर रहे। समझ में आ गया कैसे चल रहा है ये भगवद्गीता? तो हम लोग बहुत ये सभी चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अलग अलग शब्द उपयोग किए गए है ना। ठीक है, और अंत में वो बोलते हैं मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतस निराशिर निर्ममो बुद्ध्वा युद्धस्व विगत ज्वरा, ऐसे तीसरे श्लोक में श्रोका जी कहते हैं ये भगवद्गीता का लक्ष्य है, उद्देश्य को वर्णित करता है तीसरा तीसवा श्लोक। और भगवान बोलते हैं इसको सभी लोगों को पालन करना चाहिए, ये मेरा शाश्वत वाक्य है, अपौरुषेय वाक्य है, ऐसे बोलते। प्रभुपाद जी इस अध्याय के ऊपर कहते हैं भगवद्गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। ये लोग कर्म सन्यासी लोग वेदांत के ऊपर शुष्क चिंतन करते हैं, भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दुखम ये तो दुख ही लेकर आएगा, तो ऐसे कहते क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया। इतना भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है, ये इस अध्याय में भगवान वर्णन कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद अंतिम तात्पर्य के हम आपको याद रहेगा, हमने बताया कि पहला और अंतिम तात्पर्य जो है महत्वपूर्ण है, वहाँ पर बहुत सारा सिद्धांत हमें प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी वो बहुत कुछ लिखते हैं हर एक अध्याय के पहला और अंतिम श्लोक के तात्पर्य। आप देखिए वहाँ पर दूसरा पैराग्राफ, यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की मिल गया अंतिम तात्पर्य। यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं व्यवहारिक व्याख्या है। तो प्रैक्टिकल उसका वर्णन है कैसे किया जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। हमने बताया ना कर्म योग को अनुशीलन करते वो कैसे मुक्त होता है, इसको वर्णन किया जा रहा है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान की पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो कर्म योग मतलब अंत में सब कुछ भगवान को, योग मतलब भगवान को जोड़ना ही है, इसलिए कर्म योग क्या है, दैव वर्णाश्रम है, भगवान कृष्ण को केंद्र में रखने अपने वर्णाश्रम के जो भी नियत कर्म है उसको हम लोग पालन करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, इसलिए उसको क्या कहते हैं प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत में कार्य कहते हैं। कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान साथ कर्म करना। तो अभी हो क्या हो गया समाज में, अभी तो भौतिकवाद फैल गया है, कोई भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान कृष्ण कैसे भगवान है वो नहीं जानते, वो हमारे जीवन में या समाज का केंद्र होना चाहिए। इससे पहले भी जो तथाकथित वर्णाश्रम धर्म था, नास्तिक असुरी और भौतिकवादी जो ऐसे कर्म मीमांसक या कर्म सन्यासी या सांख्य के अनुयायी स्मार्त, ये सब लोग जो पालन करते थे, तो उसमें भी भगवान कृष्ण केंद्र नहीं थे। इसलिए लोग ये कर्म योग मतलब समझते नहीं हैं कि भगवान कृष्ण के लिए ये कृष्ण भावनामृत में कार्य है। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता, प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त कर्म काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य का पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, यही जीवन की परम सिद्धि है। ऐसे ये पंचम अध्याय, और यहाँ पर पहले सांख्य योग तथा कर्म योग के बीच में अंतर बता रहे हैं भगवान। सांख्य योग या अंतर, वो दोनों एक साथ में भिन्न भी है और अभिन्न भी है, कैसे है उसको वर्णन करते हैं। ये जो सांख्य योग है ये कपिल के नास्तिक सांख्य के बारे में नहीं बता रहे आपको, आप जानते हैं ना, हम लोगों ने चर्चा किया था तीन प्रकार के सांख्य होते हैं, फिर से उसका चर्चा करेंगे। और मायावादी, यहाँ पर अर्जुन ने पहले श्लोक में वो कर्म संन्यास के बारे में बताया था, तो उसको अलग रख के कर्म संन्यासी लोग भी क्या है, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, सांख्य का अनुशीलन करते हैं, तो उसको अलग रख के वास्तविक सांख्य योग कैसे भक्ति योग से या कर्म योग से भिन्न और अभिन्न है उसको भगवान इसमें वर्णन करते हैं पहले छह श्लोकों में, और उसके बाद कर्म योग में संलग्न व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं उसका वर्णन किया गया है। उनके धारणा, उनकी चेतना क्या होता है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज वर्णन आता है, वो कैसे पद्म पत्र के समान होते हैं, है ना, इस भौतिक जगत में रहते हैं या भौतिक शरीर में रहते हुए भी उससे वो अलग रहते हैं, उससे और कर्म के जो फल है उससे वो लोग वो उससे अच्युत रहते हैं। वो कर्म के कारण का दार्शनिक अध्ययन, तो वो कर्म का कारण है, कर्म का कर्म फल का सृष्टा कौन है, उसके बारे में यहाँ पर दार्शनिक अध्ययन है। इससे जानने से क्या हो जाता है, हमें कर्म फल से आसक्ति जो है वो छूट जाता है, उसके कारण वो व्यक्ति कर्मयोग में मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वो सभी जीवों को एक समान दिखता है, विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी कवि हस्तिनी, और वो काम इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, इंद्र तृप्ति की इंद्रिय भोग की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वो श्लोक है ना, कौन सा, यही संस्पर्श जा होगा दुख यो नहीं है तेरा अद्यंतवंत कौनते मतेश्वर मते बुधा। वो बुद्धिमान है इसलिए उसमें रमण नहीं करता है, और अंत में वो परम शांति को प्राप्त करता है भगवान कृष्ण को समझकर। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञातवा नाम शांति। तो ऐसे
ये थोड़ा लंबा है
16वें श्लोक से, तो पहला श्लोक लेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च संशशि एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। हमने चर्चा किया था ना 33वां श्लोक में, क्या बताया भगवान ने, ये सभी कर्म है ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त होती है। तो ज्ञान मतलब उन्होंने उनका धारणा क्या है, ज्ञान अनुशीलन करने के लिए ये कर्म संन्यास लेना चाहिए, उनका उनका धारणा है। अर्जुन का गलत समझ है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि कर्म संन्यास लेना चाहिए हम लोग कर्म योग कर सकते हैं या भक्ति योग वैष्णव संन्यास ले सकते हैं, है ना। तो जो भगवान है भगवद गीता में, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको पालन करके हम लोग ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। वो जब भी ज्ञान आ जाता है या सांख्य शब्द आ जाता है तो तुरंत ही इसमें चले जाते हैं कर्म संन्यास में। तो इसलिए वो बोल रहे हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, भगवान कृष्ण तो कभी नहीं बोले उनको कर्म से संन्यास लेने के लिए, वो उनका गलत समझ है। 33वां श्लोक का पिछले अध्याय के 33वां श्लोक का गलत समझ। पुनर्योगम च संशशि, फिर से क्या करो, कर्म योग में लगो, उठ के युद्ध करो, ये 42वां श्लोक में ऐसे बताया है ना। तो यश्चैव एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, फिर से इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है मुझे निश्चित करके बताए, ऐसे अर्जुन बता रहे। तो पढ़िए तात्पर्य द्वितीय अध्याय में आत्मा का, वहां से द्वितीय अध्याय में आत्मा का तात्पर्य। नहीं, फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स यू लीव एंड स्टार्ट रीडिंग, यू नो।
द्वितीय अध्याय में आत्मा का उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है, उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में ये बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है।
तो कौन सा श्लोक हुआ, 33वां श्लोक है कि नहीं।
चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर युद्ध करें, अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान में अकर्म इन हता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है।
वास्तव में वो अर्जुन भगवान नहीं कर रहे, अभी प्रभुपाद जी लिख रहे इसलिए कि अर्जुन का समझ को लिख रहे, अर्जुन कैसे भ्रमित हो गया, लेकिन भगवान ने वास्तव में ऐसा नहीं किया। वो इसको पालन करके क्या करो, ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त करो, ऐसे बोल रहे। लेकिन वो समझ रहा है ये है तुम्हें, ये तुम्हें भगवान इसको बता रहा है, ऐसे समझ रहा है।
अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में
संन्यास
का अर्थ है इंद्रिय कार्य के रूप में समस्त प्रकार के कार्य कलापों का परित्याग।
या यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे थे ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रियों के समस्त प्रकार के कार्य कलापों को परित्याग करना।
किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह से त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वे ही सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत करते हैं।
तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा, बीच वाला है। ये कर्म योग को पालन करके या भक्ति योग को में वैष्णव संन्यास लेने का जो है उसको उनको समझ में नहीं आ रहा।
ऐसा लगता है कि वे ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य होता है। अतः वे पूछता है कि वे सब प्रकार से कर्म त्याग दें या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें।
अभी कभी कभी ऐसे होता है ना, आप जिनसे सुन रहे हैं वो कुछ बोलते हैं लेकिन आप सुनते कुछ और है, ऐसा होता है ना। ऐसे अर्जुन को बार बार हो रहा है तो ये समस्या है, समझ में आ गया। या दूसरे शब्दों में उनको नहीं हो रहा है लेकिन हमको हो सकता है, इसलिए अर्जुन हमारी ओर से भगवान कृष्ण को ये प्रश्न पूछा। वो वास्तविक आता वास्तविकता है। और तीसरा अर्थ है कि इसको बार बार अर्जुन को ऐसा प्रेरणा, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रेरणा दे कि भगवान हमें पूरी तरह से स्वच्छंद रूप से हमें समझाना चाहते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए जीवन में, बस। तो वो तीसरा अर्थ। तो अभी देखेंगे भगवान कृष्ण क्या बोल रहे। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निश्चय साकरावो तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगश्च। श्री भगवान ने उत्तर दिया मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति योग भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो यहां पर भी कर्म संन्यास को अनुमोदन दे रहा है ऐसे लगता है भगवान, है कि नहीं। लेकिन ये जो कर्म संन्यास है और ये मायावादियों का कर्म संन्यास उनमें अंतर है। तो ये जो है ये ज्ञान योग का जो अनुशीलन करते हैं उनका है। तो बहुत सारे लोग संन्यास लेते हैं ना, वैष्णव लोग भी संन्यास लेते हैं, ज्ञानी भी संन्यास लेते हैं, सांख्या और मायावादी ये सब लोग संन्यास लेते हैं, कर्मवादी संन्यास नहीं लेते। उनके संन्यास क्या है वो अशुभ है उनको, क्योंकि कर्म को पुण्य कर्म को उन्होंने त्याग दिया है, ऐसे वो लोग कहते हैं। हम लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे कि दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्मयुक्त को परित्याग कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, ऐसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या और वो पंचम स्कंद से ये श्लोकों को उल्लेख कर रहे। तो वहाँ पर बता रहे कि कैसे एक व्यक्ति कर्म को त्याग देता है, त्याग के वो ऐसे थेरेटिकली क्या बोलते हैं उसको बाह्य रूप से थेरी मीन सिद्धांत, ये हिंदी थोड़ा बदलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि सिद्धांत मतलब तो वो निष्कर्ष है, वो सत्य है, थ्योरी कभी सत्य नहीं हो सकता, थ्योरी ओपिनियन, थ्योरी मीन्स ओपिनियन। हिंदी प्रचारकों को, हिंदी प्रचारक मतलब कृष्ण बाणामृत में हिंदी प्रचारक नहीं, जो हिंदी भाषा के प्रचारकों को सुझाव दीजिए। एनीवे, ऐसे बाह्य रूप से हम लोग समझ सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन उतना ही काफी नहीं है। तो जब तक हम लोग भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है, उनको सेवा करने के लिए इच्छा हमारे अंदर जागृत नहीं होता है, तब तक क्या होता है? तो तब तक बहुत खतरा रहता है। यहाँ पर विशेष करके श्रील प्रभुपाद दो चीज बोल रहे हैं कि हृदय जब तक शुद्ध नहीं रहता है, पतन होने का चांसेस रहते हैं। और कृष्ण भावनामृत के बिना जो वैराग्य है या संन्यास है वो परिपूर्ण नहीं है, ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो पहला चीज क्या है, हमने चर्चा किया कि सिर्फ बाहरी रूप से ये जान लेना है ना, हम लोगों ने भी सुना ना, हम लोगों ने भी आरंभ भगवद गीता के आरंभ में सुना, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा कभी मरता नहीं है, उसका हम लोगों ने सुन लिया। सिर्फ उसको सुनने से या समझने से क्या हम लोग मुक्त हो गए? मुक्त हो गए क्या? अभी भी खा रहे सो रहे ऐसे। तो बाह्य रूप से सिर्फ समझना वो काफी नहीं है, वो पहला चीज। जनरली ये लोग कर्म संन्यासी लोग क्या करते हैं, वो वेदांत को अध्ययन करते हैं, ऐसे समझते हैं बाह्य रूप से, थियोरेटिकली वो समझते हैं, लेकिन वो जरूर उतना काफी नहीं है। तो कुछ ऐसे हमें चीजों को पालन करना चाहिए जिससे हम लोग उसका वास्तविक साक्षात्कार हो, अनुभव हो, और भौतिक जगत से विरक्त हो जाए, तो वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यह श्लोक उल्लेख कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मणः विकर्मः यदिंद्रिय प्रीते यदिंद्रिय प्रीतये अप्रणोति न साधु मन्ये यतात्मनोयम् असन्नपि क्लेशदासदेहः पराभवस्तावद् अबोधजातो यावान् अजिज्ञासत आत्मतत्त्वम्। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्यायात्म अन्युपदीयमाने प्रीतिर् न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। तो यहाँ पर प्रभुपाद लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत है, वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर अनेक विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है, अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्र तृप्ति की इस सोचना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतर होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त करता है। तो क्यों इतने सारे श्लोकों को यहाँ पर उल्लेख कर रहे, इस भौतिक जगत में जब तक हमारे इच्छाएं हैं, भौतिक इंद्र तृप्ति करने की इच्छाएं हैं, वो सकाम कर्म में हम लोग लग जाएंगे। और जब तक, तो इससे क्या होता है, इन श्लोकों को उल्लेख करके श्रील प्रभुपाद ये कर्मवाद को खंडन कर रहे, ऐसा लगता है ना। वो लोग सकाम कर्म में लग जाते हैं, नियत कर्म में लगते हैं, ताकि ऊंचा भोग को, इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये क्या है, वो भी बंधन का कारण हो जाता है, वो भी अंत में विकर्मी है। सो और विशेष करके अंतिम जो यहाँ पर, या प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? जब तक वासुदेव के प्रति प्रीति नहीं जागृत होता है, तब तक इस देह बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसका अर्थ क्या बोल रहा है, इस ये लाइन जो है वो रेलेवेंट है अभी के विषय में। यहाँ पर भगवान कर्म संन्यास से कर्म योग अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करने से हमें प्रीति, उनके प्रति प्रीति जागृत होता है। उसके कारण हम लोग बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन वो सुविधा इसमें नहीं है, कर्म संन्यास में नहीं है। तो वो पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, जब तक हृदय शुद्ध नहीं रहता है, तब तक पतन होने का चांसेस रहता है। सिर्फ बाह्य रूप से मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे समझने से काफ़ी नहीं होता है। उसका साक्षात्कार होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। उसके लिए हमें ये कर्म योग या भक्ति को योग, कृष्ण भावनामृत को होना चाहिए। और तीसरा चीज यहाँ पर, वो प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल रुकते थे। श्रील प्रभुपाद उसका अनुवाद कैसे करते थे कि इसको पहले भी प्रभुपाद जी ने दूसरे अध्याय में उल्लेख किया था ना, ये श्लोक को वहाँ पर उल्लेख किया था, थे 63 में। सो उस श्लोक में उल्लेख किया था उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए कि कैसे भक्ति योग ये ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। तो वहाँ पर फल्गु वैराग्य मतलब क्या है, फॉल्स रिनाउंसिएशन। और यहाँ पर इसको उल्लेख करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक कृष्ण बाणाभावित नहीं रहता है, इसका अर्थ है कि सब कुछ जो भी है हमारे पास उसको भगवान को समर्पित करते हैं, तब तक जो वैराग्य है वो पूर्ण नहीं होता है। कर्म संन्यासी लोग क्या करते हैं, ये सब प्रापंचिक है, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, ये भौतिक जगत के वस्तु ये क्या है, मिथ्या है करके उसको त्याग देते हैं। तो लेकिन वो जो त्याग है वो, या रिनाउंसिएशन वैराग्य जो है वो परिपूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट ऐसे बोलते हैं, अपूर्ण कहलाता है उसको। फल्गु को यहाँ पर प्रभुपाद जी अपूर्ण कह रहे हैं। तो क्यों अपूर्ण है, श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे। एक व्यक्ति आता है, वो देखता है बहुत सारा 1000 रुपये का कोई नोट का नोट पड़ा है रस्से के ऊपर, वो देखता है, वो सोचता है ये मेरा नहीं है, क्यों इसको छू करके वो चला जाता है ना। और दूसरा व्यक्ति है, वो आता है और वो देखता है और इधर उधर देखता है, देख के क्या करता है जेब में डाल के देता है उठा के। और तीसरा व्यक्ति आता है और वो देखता है किसी का नोट फट गया है, तो वो ढूंढता है उसको किसका है करके, उसको पहचान के वो उनको समर्पित कर देता है। इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ है बताइए? तीसरा व्यक्ति है। वो पहला व्यक्ति है वो कर्म संन्यासी है, और दूसरा व्यक्ति है कर्मवादी है। हाँ, दोनों मूर्ख है बोलते हैं प्रभुपाद। तो हमें सब कुछ भगवान का है। यहाँ पर वो श्लोक तो उल्लेख नहीं करते हैं तात्पर्य के अंत में, लेकिन वो बताया संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब तक यह ज्ञात होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। कौन सा श्लोक है वो ईशोपनिषद में? ईशावाशमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगतेन त्यक्तेन गुंजिता मा कृत कस्य स्विद्धनम्। तो सब कुछ भगवान ईश का है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, तो आप क्या त्याग करने वाले हैं? क्या त्याग करने वाले हैं? आपको कुछ है तो त्याग करना चाहिए ना, है कि ना? सब कुछ भगवान है तो, भगवान का है तो क्या त्याग करने वाले? इसीलिए जिस व्यक्ति का ये वस्तु है उसको क्या करना चाहिए? सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। वो वास्तविक वैराग्य है, ठीक है? तो वो यहाँ पर बता रहा है। अन्य जो वैराग्य है वो अपरिपूर्ण। तीन पॉइंट याद रखना चाहिए, क्यों कर्म योग श्रेष्ठ है। पहला चीज है कि जब तक भगवान वासुदेव के प्रति प्रीति जागृत नहीं होता है तब तक ये भवबंधन से छूट नहीं सकते, सिर्फ कर्म संन्यास लेने से छूट नहीं होता है। दूसरा चीज है, चेतना शुद्ध न होने के कारण सिर्फ कर्म संन्यास लेने तो खत्म होने का होता है। और तीसरा चीज है कि वैराग्य परिपूर्ण नहीं होता, सिर्फ कर्म संन्यास लेने से वैराग्य परिपूर्ण नहीं होता, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने से वैराग्य परिपूर्ण। ये तीन विषय है प्रभुपाद यहाँ पर क्यों श्रेष्ठ है उसका वर्णन कर रहे हैं। तीसरा श्लोक, श्रेयस गेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न काक्षति निर्द्वंगो हि महाबाहो सुखम भल्ला प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर गौ बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। नित्य सन्यासी, वो सन्यास लिए या न ले वो हमेशा सन्यासी है। कौन? जो कर्म फलों से अनासक्त रहता है वो नित्य सन्यासी है। सन्यास लेना क्या चीज है? वो बाह्य रूप है। आप दंडाधिकरण ग्रहण किया, कमंडलों पकड़ लिया, ऐसे वस्त्र पहन लिया, लेकिन अंदर से कुछ वास्तविक जो सन्यास जो त्याग भावना नहीं है, अनासक्ति नहीं है कर्म फलों से, तो क्या होता है? वो वास्तविक सन्यास नहीं है, सिर्फ रूप में सन्यास है, वास्तविकता नहीं है उसमें। लेकिन जो वास्तविकता जिसके पास रहता है वो हमेशा नित्य सन्यासी है। बाहरी रूप हो या ना हो तो वो वास्तविक सन्यासी है। तो क्या है उसका मूल जो वास्तविकता क्या है? कर्म फलों से अनासक्त रहना चाहिए। और भक्ति में ये कर्मयोग के स्तर पर है, और भक्ति में क्या होना चाहिए? वैष्णव सन्यासी का क्या अर्थ होता है? दंडा ग्रहण किया और कमंडलों लिए और कावी वस्त्र पहन लिए, वो सन्यासी होते हैं। जो मन बुद्धि और शरीर को पूरी तरह से वाचा वाणी तो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाते हैं वो वास्तविक सन्यासी है। तो छठे अध्याय में इसको या अनाश्रित कर्म फलम, तो उस तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद छठे अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में भी वो श्लोक उल्लेख करते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश कामय मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे। क्योंकि मुझे धन जन सुंदरी और कविता का कोई इच्छुक नहीं हो, जन्म जन्मांतर आपकी अहित की चाहिए, ऐसे जो कहते हैं वो वास्तविक सन्यासी है। ऐसे श्री प्रभुपाद कहते हैं वो नित्य सन्यासी है, या कर्म फल से आसक्त नहीं है वो नित्य सन्यासी है, ऐसे यहाँ पर कहते हैं। और श्री प्रभुपाद आदि के तात्पर्य के आरंभ में दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन नहीं, पूर्णतः पूर्णतः कृष्ण भावना वाहित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फलों से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसे सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक स्थिति को जानता है। तो पूर्ण ज्ञानी होता है, वो पूर्ण ज्ञान क्या है बताइए? पूर्ण ज्ञान हम पिछले अध्याय में पूर्ण ज्ञान के अचिंत्य वेदा वेदा तत्व, वो ज्ञान नहीं है तो वो सन्यास नहीं हो सकता। सन्यास का एक लक्षण होता है ज्ञान योग स्थित। 16वें अध्याय के आरंभ में कहते हैं दैवी और असुरी गुण के जो वर्णन करते हैं, दैवी गुण में पहला चीज क्या बोलते हैं? अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। तो अवयम सत्व संशुद्धि, अवय होना चाहिए उसका सत्व शुद्धि, जीवन शुद्ध होना चाहिए, चेतना शुद्ध होना चाहिए, और ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। इसका अर्थ है जिस व्यक्ति को अचिंत्य वेदा वेद तत्व का दर्शन का ज्ञान है वही पूर्ण सन्यासी, पूर्ण ज्ञानी है, वही नित्य सन्यासी। ऐसे वो तीन जो है ज्ञान योग व्यवस्थित तीनों सन्यासियों के लिए है, वो तीनों गुण, पहले जो तीन गुण अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान। तो प्रभुपाद इसके बारे में अचिंत्य वेदा वेद तत्व के बारे में कह रहे हैं कि ये जो अचिंत्य वेदा वेद तत्व क्या है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली करेक्ट, गुणात्मक दृष्टिकोण से और मात्रा के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से ये सही है। तो जब एक बार पूछा गया था श्रील प्रभुपाद जी को आप द्वैत और अद्वैत के बीच में के बारे में क्या कहते हैं, आपका कौन सा है, इन दोनों के बीच में क्या कहते हैं अर्थ, तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि दोनों में दोनों सही है लेकिन वो पूर्ण नहीं है। एक कहता है आप भगवान से भिन्न है, एक कहता है आप भगवान से एक है। तो दोनों दोनों सही है, हम लोग गुणात्मक दृष्टिकोण से भगवान से एक है क्वालिटेटिवली, लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से भिन्न है। तो दोनों अचिन्त, इसको अचिंत्य वेदा वेद तत्व कहते हैं, ये परिपूर्ण है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कहा था कि ये सभी प्रकार के जो वैष्णव दर्शन है, मायावाद है, उन सबको और जो नास्तिक जो षड दर्शन है, तो उन सबको उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ऑल दी स्पेकुलेशन दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द वेदास, वेदों से ही ये सब मनोधर्म क्या है आते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ अचिंत्य वेदा वेद तत्व ही परिपूर्ण है, ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं। सो तो इसमें क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, पिछले तात्पर्य में तीन उन्होंने कैसे कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से, और इसमें एक और बताते हैं कि उनका जो ज्ञान है वो परिपूर्ण नहीं रहता जो कर्म संन्यास लेते हैं। तो लेकिन जो भक्ति योग का पालन करना है विशेष करके अचिंत्य वेदा वेद तत्व को जानते हैं वो पूर्ण ज्ञानी है, उनका ज्ञान परिपूर्ण रहता है। ये चौथा पॉइंट है क्यों कर्मयोग या भक्ति योग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। और उसके बाद में तो निर्द्वंद्वो हि महाबाहो बंधात् सुखम बंधात् प्रमुच्यते, यह ज्ञान की एक उसके मन में किसी प्रकार के छल कपट नहीं रहता है, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट में से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते, द्वंद्व नहीं है उसके मन में, अच्छा बुराई का जो द्वंद्व है वो नहीं है, इसके कारण इस भौतिक इस जीवन के अंत में वो मुक्ति प्राप्त मुक्त हो जाता है। सो चौथा सांख्य योगो पृथक भाला पृथदंज्या विपश्च एकम्यप्यस्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न करता है। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का बलिबांधि अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर सांख्य शब्द को लेकर आ रहे हैं भगवान। इसका अर्थ क्या है? तो कर्म सन्यासी लोग भी सांख्य का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सांख्य का वर्णन हो रहा है वो जो कपिल देव ने वर्णन किया था उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद हम लोग देखा कि दूसरे अध्याय के 29वां श्लोक में वो कहते हैं कि 39वां श्लोक में वो कहते हैं कि आप खोले उसको। इस श्लोक को वहां पर उल्लेख कर दर्शन प्रभुपाद मिल गया। कौन सा पैराग्राफ? दूसरा, तीसरा पैराग्राफ के बीच में देखे तात्पर्य के दूसरा पैराग्राफ। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य का भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा के विश्लेषक अध्याय। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषण अर्जुन वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ के ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव कर मानते हैं। सांख्य योग प्रदग बाला प्रगदंति अभी पंडित। समझ में आ गया अभी क्या है यहाँ पर सांख्य का अर्थ? दोनों एक ही है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? वो बोल रहे हैं कि एक क्या है, जड़ को खुदाई करके जड़ को ढूंढना है और अंत में जड़ मिलने के बाद पानी डालना है। दूसरा है वृक्ष है इसलिए जड़ होंगे ही, इसलिए सीधा पानी डाल दो। ये दोनों एकता और भिन्नता है सांख्य योग में और कर्म योग या भक्ति योग में। तो भक्ति योग में क्या होता है, सीधा हम जानते हैं वृक्ष है तो जड़ है। जड़ कौन है? वो भगवान विष्णु है, तो आधार है वो। जड़ आधार होता है ना वृक्ष का। तो वैसे ये शरीर का आधार क्या है बताइए? शरीर का आधार क्या है बताइए? शरीर क्यों जीवित दिखाई दे रहा है? आत्मा ही आधार है। आत्मा नहीं है तो ये शरीर मृत है, इसमें कोई जीव नहीं रहता है। तो वैसे पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व का आधार कौन है? वो भगवान विष्णु। तो वृक्ष है इसलिए भगवान उनके आधार क्या है? भगवान है, होंगे ही, इसलिए सीधा पानी डालो। लेकिन न सांख्य योग का अर्थ है खुदाई करके ढूंढो, जैसे आधुनिक ये ना विज्ञान में वो लोग रिसर्च करके ढूंढना चाहते हैं। लेकिन जो सांख्य और आधुनिक विज्ञान में अंतर क्या है? ये आधुनिक विज्ञान अपरिपूर्ण संशोधन कर रहा है। सांख्य क्या है? एक परिपूर्ण संशोधन है, क्योंकि वो वेदों से आता है या ऊंचे अधिकारी से आता है, कपिल देव, भगवान कपिल देव से आता है। तो अंत में सांख्य से हमें क्या पता चल जाता है कि भगवान सभी ये 24 तत्वों का आधार है, तो इसलिए उनको सेवा करना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से एक भी है भिन्न भी है, या दूसरे शब्दों में ये एक ही है, दोनों भक्ति योग है। लेकिन जो बाल है, बाल मतलब चाइल्डिश, बुद्धिमान चिल्ड्रन, बच्चे यू नो बुद्धिमान नहीं होते, वो लोग दोनों को अलग मानते हैं, पृथक मानते हैं, पृथक नहीं है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं। तो अगला श्लोक लेंगे। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च पश्यति पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जाता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग एक समान दिखता है वही वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखता है। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। सो कि कैसे भक्ति और सांख्य क्या है एक दूसरे से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, अंत में वो भिन्न है। तो इसलिए दोनों एक ही हैं, इसको जो समझते हैं वो वास्तविक ज्ञानी हैं, ऐसे भगवान य पश्यति स पश्यति ऐसे बोल रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद उनमें क्या भिन्नता और एकता है, क्या एकता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो सांख्य योग में एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत से विरक्त होना चाहिए और भक्ति योगी को क्या करना चाहिए, सब कुछ भगवान को समर्पित करना चाहिए, वही विरक्ति का लक्षण है सब, है ना। हमने वास्तविक संन्यास क्या है ऐसे चर्चा कर रहे, तो दोनों एक ही है। जब तक हम लोग भगवान को अपने आप को जोड़ते नहीं है तब तक इस भौतिक जगत से अनासक्ति नहीं आता है, इसलिए दोनों एक ही है। उसको ऐसे जो देखते हैं वो वास्तविक दृष्टा है ऐसे कहते हैं। तो अगला श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं न योगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। सो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं न योगतः। क्या समस्या है कर्म संन्यास से, वो दुख प्रदान लेकर आ सकता है। तो दुख मातुम अयोगतः, क्योंकि बताया गया है ना क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। 12वें अध्याय में भी भगवान ने बताया ये निर्गुणवाद निर्विशेषवाद क्या है, बहुत सारा क्लेश लेकर आएगा ये बद्ध जीव के लिए। तो वैसे ही दुख मातुम अयोगतः योग युक्त मुनीर ब्रह्मा नचिरेनादि गच्छति। जो योग में युक्त है बहुत ही शीघ्र ही क्या है तो ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, मुनीर ब्रह्म। योग युक्त मुनि जो होते हैं, योग युक्त मुनि जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासियों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग ये क्या कीजिए, एक टेबल बना दीजिए, डिफरेंस बिटवीन वैष्णव सन्यास एंड मायावादी सन्यासी, ये कब वैष्णव सन्यासी दूसरा, आप जानते हैं ना वो टेबल का वो डिस्टिंग्विश बिटवीन टू, ऐसे कैसे टेबल बनाते हैं उसको बना दीजिए आप। हाँ ठीक है। अगला श्लोक। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नप्नोति लिप्यते। तो हम लोगों ने देखा ना अभी संख्य योग और कर्म योग के बारे में बताया, वो दोनों एक ही है क्योंकि अंत का जो फल है वो दोनों एक ही हो जाता है अंत में। तो अभी भगवान कर्म योग में संलग्न व्यक्ति के लक्षण बताएंगे। योग युक्त विशुद्ध आत्मा कैसे होता है, वो योग युक्त संलग्न व्यक्ति, युक्त मतलब संलग्न व्यक्ति, विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय। तो विशुद्ध आत्मा उसका चेतना बहुत ही शुद्ध रहता है, विजित आत्मा मतलब मन को वो जीत लेता है। आत्मा शब्द का अलग अलग अर्थ होते हैं आप जानते हैं ना, आत्मा शब्द का ना जो आत्मा होता है सोल सोल उसको भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं और शरीर को भी आत्मा कहते हैं, अलग 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 समय पर उसको अलग अलग, यहाँ पर मन को आत्मा करके संबोधित किया। विजित आत्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय जो इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से काबू कर चुका है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते, तो सर्वभूतात्म भूतात्मा वो सभी आत्माओं के आत्मा है वो, ऐसे बोलते हैं। और या दूसरे शब्दों में बहुत ही प्रिय है ऐसे बोलते। हमारे लिए ये शरीर क्यों प्रिय है बताइए, तो आत्मा है इसलिए वह शरीर प्रिय है। तो इसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके इंद्रिया के ऊपर पूरा निग्रह है, विजित आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, वो सब सभी जीवों के लिए प्रिय है। और वो कर्म करते हुए भी वो न लिप्यते, कर्म फल से वो बंध नहीं जाता है ऐसे। वो क्यों प्रिय होता है सभी जीवों के लिए बताइए, क्यों प्रिय होता है सभी जीवों के लिए? क्योंकि उनके प्रति जो इंद्र तृप्ति का जो स्पर्धा रहता है, इस जगत में सभी झगड़ा द्वेष किसके लिए होता है? इंद्र तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए। दो मित्र होते हैं, एक मित्र आगे बढ़ गया तो दूसरे मित्र को क्या हो जाता है? सो द्वेष होना शुरू कर देता है, क्योंकि उन दोनों क्या में, उन दोनों में हालांकि बाहरी रूप से वो स्पर्धा वो दिखाते ना हो, लेकिन अंतर अंदर के रूप अंदर में क्या हो जाता है? स्पर्धा रहता है इंद्र तृप्ति के लिए। मैं बड़ा आगे बढ़ना चाहिए, मैं बड़ा होना चाहिए, मुझे सब कुछ भौतिक जगत के सभी संपत्ति और सौंदर्य मेरे आनंद के लिए होना चाहिए। ऐसे सभी जीव क्या कर रहे हैं यहाँ पर? स्पर्धा कर रहे हैं भौतिक जगत में, इसलिए फाइटिंग होता है ना। कोई लव एक लड़की होता है, दो लवर होते हैं, उसके बीच में फाइटिंग हो जाता है। तो सब लोग इसके लिए यहाँ पर भौतिक जगत में द्वेष, स्पर्धा, झगड़ा, युद्ध सब हो रहा है। हिटलर सोचता है सभी इंद्र तृप्ति मेरे अनुसार होना चाहिए, और क्या कौन है वो चर्चिल बोलता है ये नहीं हमारे ओर से होना चाहिए, तो इसलिए युद्ध शुरू हो जाता है। तो ऐसे युद्ध चलता रहता है इस जगत में। लेकिन जो व्यक्ति विशुद्ध आत्मा है, विजित आत्मा है और जितेंद्रिय है, उसको इस भौतिक जगत में क्या लेना देना? तुम ही रख लो दुनिया के सब कुछ, सभी संपत्ति सुंदरी सब कुछ। तो इसलिए उसके अंदर कोई द्वेष ज़्यादातर झगड़ा स्पर्धा, इसलिए वो अन्य जीवों को क्या हो जाता है? तो प्रिय हो जाता है। तो वो गोस्वामी, वो हम लोग देखते हैं ना, वो श्रीनिवास आचार्य ने वो लिखा है षड गोस्वामियों के बारे में, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, धीरों के लिए और अधीरों के लिए सबके लिए वो प्रिय है। रफिन्स, जेंटल एज वेल एज रफिन्स, दोनों के लिए ये गोस्वामीगण प्रिय थे। नारदमुनि कंस के लिए भी प्रिय है ना, उनको भी सुझाव देते हैं क्या करना चाहिए, है ना। तो ऐसे प्रिय रहते हैं क्योंकि वो और यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं सबके लिए इसलिए प्रिय रहते हैं क्योंकि वो सबको सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं वो? मानव सेवा, माधव सेवा नहीं, क्योंकि वो माधव की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए वो सभी जीवों का सेवा करते हैं। यथाथरो मूल निषेचन तृप्यंती स्कंद भुजोपशाक प्राणोपहारश्च यदिन यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरम अच्युतेज, क्योंकि वो अच्युत भगवान को सेवा कर रहे हैं। भगवान को सेवा करने का अर्थ है जैसे आप जड़ को पानी देंगे तो सभी फूल पत्ते सभी टहनियों को पानी पहुंच जाता है, अलग से फूल पत्तों को पानी डालने की जरूरत नहीं है। या आप जैसे अन्न पेट को अन्न देते प्रदान करते हैं, वैसे ही उसका जो भी शक्ति है वो सब कुछ संचारित होगा पूरा सभी अंगों में, अलग से आपको हाथ को वगैरह अन्न देने का जरूरत नहीं है। तो वैसे ही जब आप भगवान कृष्ण को का सेवा करेंगे, उनकी ओर से प्रचार करेंगे, तो सभी जीवों को भलाई करेंगे आप। तो इसलिए सभी जीवों के लिए जीवात्मा प्रसन्न, ये ऐसे व्यक्ति विजितेंद्रिय विशुद्ध आत्मा है, वो प्रिय है। तो आजकल हम लोग सोचते हैं ऐसे कुछ मानव सेवा करके ही हम लोग सबको प्रसन्न कर सकते हैं, समाज को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब है ना, वो क्या है, फूड फॉर लाइफ, अन्नामृत वगैरह सब कर रहे हैं। उससे कृपण दुर्जन प्रसन्न हो जाएंगे, जो दुष्ट लोग हैं। जीव तो भगवान तो प्रसन्न नहीं होंगे, अंत में सभी अप्रसन्न ही होंगे उससे, उसके कारण। तो और तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद एक बात, एक मुद्दा उठा रहा है, यहाँ पे अर्जुन युद्ध भूमि में भगवान उनको प्रेरणा दे रहा है युद्ध करने के लिए, इससे दूसरे जीवों को कैसे प्रसन्न कर रहे हो, ऐसे प्रश्न होता है ना। वो दूसरों को अपराध कर रहे हैं ऐसे होता है, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं ऐसे प्रश्न आता है, हो सकता है ना, है कि नहीं। लेकिन हमने उसको पहले ही चर्चा कर चुके हैं पहले अध्याय में, कि कैसे भगवान के उपस्थिति में ये सभी जीव भगवत धाम लौट के चले गए। तो भगवान को सेवा करने से, उनकी मिशन को अनुगमन करने से क्या हो जाता है, सभी जीवों का भी उद्धार हो जाता है, सभी जीवों का भी भलाई हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि माधव को छोड़कर मानव सेवा करना अच्छा है, क्योंकि उससे सबका भलाई होता है। तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं फिलान्थ्रोपिकल एक्टिविटीज, उससे क्या दोष है उसके, उसमें दो दोष भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं, कि वो नास्तिकवाद को फैला देता है, और दूसरा है जीवों को हिंसा, जीव हिंसा बढ़ाता है। हम सोच रहे हैं कि जीव को भलाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हिंसा बढ़ा। नास्तिकवाद कैसे बढ़ जाता है, ये जो फिलान्थ्रोपिकल एक्टिविटी है, मानव सेवा जो कर रहा है या समाज सेवा जो कर रहा है, वो व्यक्ति भगवान बन जाता है सभी के लिए, है ना, भगवान को पोजीशन ले लेता है, इससे नास्तिकवाद बढ़ जाता है, लोग उसको ज़्यादा मानते हैं, भगवान जो मूल भगवान है, जिन्होंने सब कुछ सृष्टि किया है, जिन्होंने सबको पालन कर रहे हैं, वो उसके कारण क्या हो जाता है। तो तो उसके कारण नास्तिकवाद बढ़ जाता है। और दूसरा चीज जीव हिंसा, क्योंकि हम लोग वो ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं उनको, कृष्ण के साथ उनका क्या संबंध है वो प्रचार करके उनको ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं, उनको भी कृष्ण भक्ति में नहीं लेकर आते हैं, इसके कारण क्या हो जाता है, वो अच्छा सुविधा प्राप्त करके, आपकी मानव सेवा और समाज सेवा से अच्छा सुविधा प्राप्त करके, इंद्रिय भोग करके, पाप करके नरक में चले जाएंगे, ये जीव हिंसा। तो इसलिए वो परिपूर्ण नहीं है वो सेवा, जब इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके मिशन में हम लोग काम करते हैं, तो क्या हो जाता है, सबका भलाई हो जाता है। तो ये हमें समझना चाहिए, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे मंदिर, भगवान विष्णु के मंदिर में एक नवसखी भक्त घंटा बजाना, ये करोड़ों करोड़ों अस्पताल और विश्वविद्यालय खोलने से भी ज़्यादा है, एक बार ऐसे घंटी बजाना, क्योंकि उसका भी वर्णन आया शास्त्रों में, वो घंटी का ध्वनि सुन के कितने सारे जीव मुक्त हो जाते हैं, उसका भी वर्णन आता है शास्त्रों में। नया व्यक्ति यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, आके घंटी बजाते हैं यहाँ पर आते हैं तुरंत ही, वो करोड़ों करोड़ों अस्पताल, करोड़ों करोड़ों विश्वविद्यालय खोलने से भी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कई जीवों का परमानेंट समस्याएं खत्म हो गए, वो मुक्त हो गए, बार बार इस जगत में जन्म लेके मरने की बजाय। तो इसलिए वो सबके लिए प्रिय बन जाते हैं जो भगवान की मिशन में काम करते हैं। सो सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते, सभी कार्यों में युक्त होके भी वो बंधता नहीं है। तो अगला श्लोक लेंगे। नैव किंचित करोमेति युक्तो मन्नेत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् उन्मिषन् निमिषन्। तो पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् फषन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषमपि इंद्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सुनते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदा सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। नैव किंचित करोमेति युक्त मन्नेत तत्ववित्। क्या सोचते हैं वो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। नैव किंचित करोमेति, क्या हो रहा है, ये सभी कार्य जो है आंखें खोलना बंद करना मुंह खोलना बंद करना ये सब चीज क्या है, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संसर्ग से सभी कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे उसकी धारणा है, वर्तन्त इति धारयन् ऐसे कह रहे हैं, उसकी धारणा है, उनका अनुभव है ये, उनका साक्षात्कार है ये। इसका अर्थ है अपने आप को इस शरीर से वो भिन्न साक्षात्कार कर चुके हैं। बहुत अच्छा चीज है ना ये, बहुत ही फील्स अलूफ फ्रॉम दिस बॉडी एंड बॉडीली एक्टिविटीज। तो ये उनकी साक्षात्कार धारणा है, वर्तन्त इति धारयन्। तो हम लोग भूख, हमें भूख लगता है कि नहीं, हमें नींद आता है, हम ऐसे इंद्रिय विषयों को देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं, क्यों, मैं ये करना, ये मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसे हम लोग सोचते हैं। क्यों, अभी भी हम लोग देहात्म बुद्धि में हैं। हालांकि बाह्य रूप से हम लोगों ने भी देख समझ लिया कि मैं देह नहीं हूँ मैं शरीर हूँ करके, हाँ, लेकिन अभी भी हम लोग देहात्म, ऐसे हमारा यह साक्षात्कार नहीं हुआ ऐसे। तो लेकिन ये जो व्यक्ति है उसको ऐसे साक्षात्कार होता है, ऐसे महसूस होता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कर्म का अलग अलग जो कारण है, निकट और दूरस्थ, इमीडिएट एंड रिमोट कॉज कहते हैं पांच। तो ये पांचों में कुछ क्या है इमीडिएट है और कुछ क्या है रिमोट कॉज है, निकट और दूर। जैसे हम बताते हैं ना, सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने से या ज़्यादा अध्ययन करने से ही हमें अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें ये सभी कार्य, सभी जो फैक्टर्स है, ये सभी कारण जो है उसमें संलग्न है, कर्ता कर्म अधिष्ठान प्रयास तथा भाग्य। कर्ता मतलब जो व्यक्ति आत्मा, इसको विस्तार में 18वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में वर्णन किया गया। तो ये पांच, और ये पांचों कौन है उसके बारे में भी वर्णन आता है। तो मिल गया, देखिए वहां पर है ना। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणम्। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम इन्हें समझो, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। वेदांत, यहाँ पर सांख्य को वेदांत कहते हैं क्योंकि वो वेदांत है, ज्ञान है वो। अधिष्ठानां तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं विविधाश्च पृथग्चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण हैं। सो शरीरम शरीर वांग्मयो वांग्मनो वीर्य यत्कर्म प्रारभते नरः नायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, वो शरीर क्या है, वो कर्म का स्थान, अधिष्ठा, और मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांचों कारणों के फल स्वरूप होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उसके पहले के जो हम लोगों ने पांच चैवात्र पांचम उसके तात्पर्य में बोलते हैं, अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, तभी वो कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसके उल्लेख श्रुति में है। येष ही दृष्टा सृष्टा, प्रश्न उपनिषद वेदांत सूत्र में, जो था एव तथा कर्ता शास्त्र शास्त्रात् शास्त्रार अथवात्वात्, श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होता है, एंडिवर, लेकिन सारे कर्म कर्म का लाभ, सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में भिन्न रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बांधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। तो इसलिए रिमोट कॉज क्या है, वो भगवान है। तो इसलिए अंततोगत्वा भगवान है, ये जानते हैं कि उनसे उनके द्वारा ये सब कार्य हो रहे हैं, मैं इससे अलग हूँ, ऐसे ये जानते हैं। पढ़िए उसको तात्पर्य।
क्योंकि कृष्ण भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तद्वरस्त पांच कारण कर्ता कर्म अधिष्ठान प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वे भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने शरीर और इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वे अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यवस्था है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्र तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की दृष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वे ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई दे। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के चलना बोलना मन जागना आदि कर्मेंद्रिय के कार्य। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वे भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उसे ज्ञान है कि भगवान का कि वह भगवान का शाश्वत नाश।
अगला श्लोक, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि श्रम्भं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स नपुः पद्मपत्रामिवाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। ब्रह्मणी शब्द का अर्थ होता है अलग अलग है, प्रभुपाद कृष्ण बाणामृत भी बोलते हैं और प्रधान भी बोलते हैं, महत्वत्व भी उसका अर्थ होता है। तो मम योनिर महत ब्रह्म, इस श्लोक को यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, चौथवे अध्याय के तीसरा श्लोक। वो महत योनिर, मम योनिर महत ब्रह्म, महत ब्रह्म क्या है, वो महत्त्व है वहाँ पर चौथवे अध्याय के तीसरे श्लोक में, तो इसका अलग अलग अर्थ होते हैं। तो हालांकि ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम, इस भौतिक जगत में रहता है जो महत्त्व से बना है, फिर भी वो पद्म पत्र के समान है, ऐसे बोलते हैं। जैसे पद्म पत्र क्या है, पानी में रहता है या कमल कीचड़ में उगता है और फिर भी वो कीचड़ से दूषित नहीं रहता है उसके पत्र विशेष करके, तो वैसे ही वे महातत्व के कीचड़ में रहते हुए भी ये व्यक्ति क्या है, उससे भिन्न रहता है, अलग रहता है, तो वो हमें समझना चाहिए। तो ये अर्थ है यहाँ पर अलग अलग उपनिषदों से भगवद्गीता से उल्लेख करते हुए ब्रह्मणी शब्द का प्रॉपर उल्लेख कर रहे हैं। तो ये श्लोक जो है वास्तविक आर्ट ऑफ लिविंग है, कैसे रहना चाहिए इस भौतिक जीवन जगत में, है ना ताकतीत नहीं है, स्माइल ऐसा नहीं। तो प्रभुपाद जी उसको तीसरे अध्याय के वापिस लेकर जाते हैं हम लोग। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। भगवान गीता तीसरे अध्याय के तीसरे में कहते हैं, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास, संपूर्ण कर्म को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो ऐसे वो सभी लिप्यते नपा पद्म पत्रम इवाम्बसा, सभी अशुभ और शुभ कर्म कर उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। तो इसको आगे और वर्णन करेंगे यहाँ पर भगवान, हम लोग इसको देखेंगे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि, सो मन से बुद्धि से ही नहीं और शरीर से भी इंद्रियों से भी वो कार्य करते हैं। जो कर्म सन्यासी मन और बुद्धि का ही सिर्फ उपयोग करते हैं वो लोग, शरीर का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति वो शरीर से इंद्रियों से भी केवल इंद्रियैरपि, केवल इवन विथ और नॉट ओनली विथ केवल, केवल मीन्स नॉट ओनली विथ, इवन विथ सेंसेस और बॉडी। तो वो क्या करते हैं, योगिना कर्म कर्वन्ति, ये जो योगी है संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। शिल प्रभुपाद वो भक्ति रसामृत सिंधु से वो श्लोक उल्लेख कर रहे हैं। भक्त कैसे हैं, तो हम चर्चा कर रहे थे कल, तीन प्रकार के जीव होते हैं, बद्ध जीव, मुक्त जीव और तीसरा कौन सा होता है, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त क्या अंतर है ये मुक्त जीव में, मुक्त है लेकिन फिर भी भौतिक जगत में है, इस भौतिक जगत में रहने के बाद भी वो मुक्त है। यह यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वपी अवस्था सु जीवन मुक्त से उच्छते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से भगवत कृष्ण वाणांग से कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वो तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना हो। वो कैसे रहते हैं, हम उदाहरण दे रहे थे ना, तो बाहरी एक शल वो बहुत कठोर रहता है वो नारियल में, अंदर जब वो सूख जाता है तो वो शल से अलग हो जाता है ना वो बाहर के। तो ऐसे ही ये व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहकर भी उससे अलग रहता है, इसलिए उनको जीवन मुक्त कहते हैं। और ये शरीर बुद्धि मन के द्वारा उनको कार्यों को करते हुए भी वो सिर्फ उसके लिए कर्म करते हैं, वो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, उसे अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इनमें से विश्वास इसमें विश्वास नहीं रखता है कि वह भौतिक शरीर अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और ना ही यह शरीर उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी की सेवा में लगता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एकाकार रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण वाणामृत की पूर्णावस्था है। तो कृष्ण से एक रूप हो जाता है, ही बिकम्स वन, एक रूप नहीं है, ही बिकम्स वन, एक हो जाता है। एक हो जाता है मतलब वह उनसे एक अपना अस्तित्व को खोता नहीं है, उसका अर्थ क्या है, वो चेतना में एक हो जाते हैं। हम लोग वो चर्चा कर रहे थे ना, एक वैष्णव दर्शन है शुद्धाद्वैत, शुद्ध अवस्था में जब चेतना शुद्ध हो जाता है तो भगवान से एक हो जाते हैं। उसका अर्थ है जैसे भगवद्गीता का उदाहरण लेंगे तो भगवद्गीता के आरंभ में अर्जुन और कृष्ण का जो इच्छा है वो भिन्न भिन्न थे, तो जब अंत हो गया भगवद्गीता का उपदेश हो गया तो अर्जुन और भगवान कृष्ण की इच्छाएं एक हो गई, चेतना में एक हो गए। इसका अर्थ नहीं है कि दोनों एक ही व्यक्ति बन गए अपना अस्तित्व करके। तो यू नोट डाउन दिस, एक रूप मतलब वी शुड नॉट पुट एक रूप में, पीपल मे मिसअंडरस्टैंड। तो ऐसे हमें वो इसलिए वो सभी कार्यों को इंद्रियों को शरीर बुद्धि के कार्यों को में करते हुए भी वो क्या है, सिर्फ शुद्धि के लिए कर्म करते हैं।
रीड फर्दर
उसके बाद का वाक्य है ना, ही इज वन विद कृष्णा मीन्स एक रूप नहीं है ना, ठीक है। तो अगला, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्त काम कारेण फले सत्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित करता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वो बंध जाता है। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम्, जो युक्त कर्म योग में लगा हुआ है। दूसरा जो लाइन है वो कैसे शुरू होता है, अयुक्त से शुरू होता है, दोनों एक तद विरुद्ध। जो युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को त्याग करके शांति मापनोति नैष्ठिकीम्, जो नैष्ठिकी शांति है वो प्राप्त करता है। लेकिन जो अयुक्त है क्या करता है, काम कारेण फले सत्तो निबध्यते। तो काम का इच्छा करके वो कर्म फल का इच्छा करके उससे आसक्त होकर क्या करता है, वो इस भौतिक जगत में बंध जाता है। So Srila Prabhupada is quoting Srimad Bhagavatam, which verse it is? Bhagavat में किसी कर्म के फल की चिंता के कारण परम सत्य का ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया। कौन सा श्लोक है बताइए? सेम वही है, ये ट्रांसलेशन भी कुछ समझ में नहीं आता, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है, शायद वो लोग सही हो सकते हैं। इन भागवतम द कॉज ऑफ एंग्जाइटी और रिजल्ट ऑफ cause of anxiety or result of an activity is explained as being one function that is without the knowledge of absolute truth.
Bhayam dvitiya vinivesha, kon batayenge uska arth?
Sabhi prakar ke is bhautik jagat mein bhay, aakankshaen, chintaen, ye kiske liye hote hain? परम सत्य के जो ये भौतिक जगत के द्वंद्वों से, जो परम सत्य के ज्ञान न होकर भौतिक जगत के द्वंद्वों में कार्य करने से होता है, वो भय का कारण हो जाता है। वो इसलिए क्यों क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, अयुक्त कर्म कार्य न फले सत्तो निबद्धते, क्योंकि वो अयुक्त है, वो भगवान के संबंध में नहीं लगा हुआ है, इसके कारण सभी भय और चिंता या बंधन का कारण बन जाता है। ओके, रीड दिस।
एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक निहात बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति
युक्त अयुक्त, हाँ, उनके दोनों के बीच में अंतर बता रहा है, ठीक है।
पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है कि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहेगा उन्हीं के लिए कर्म करता है, वे निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता के कारण का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावना में कोई द्वंद नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है, अतः कृष्ण भावना में संपन्न सारे कार्य परम पद पे हैं, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावना में जीव शांति से पूरे रहता है। किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए लोग इंद्रियों के लाभ के लोग यह फंसा रहता है, उससे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावना में का रहस्य, यह अनुभूति है कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, शांति तथा भरे का पद है।
सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे नैव कुर्वन्न कार्यम्। जब देहधारी जीवात्मा अपने प्रकृति को वश में कर लेता है तो और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नाव द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, वशी वशी यहाँ पर शब्द आता है ना, सुकम वशी, और मन से समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है। मनसा संन्यास्यास्ते,
तब वह नौ द्वारों वाले भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो ऐसे वो नवद्वार पूरे, ये शरीर को नवद्वार पूरा कर गया, सिटी ऑफ नाइन गेट्स। कौन कौन से है नवद्वार बताइए। कौन बताएंगे? हमारा नया ब्रह्मचारी डिसअपीयर हो गया। कान, आंख, नासिकाएं, मुंह और तो नौ हो गए। तो नवद्वार है पूरे, जो इनको वश में करता है, नवी नवद्वारों के जो कार्यकलापों को जो वश में करता है वो शांतिपूर्वक रह सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी इसका लंबा वर्णन आता है। कहाँ पे वर्णन आता है? पुरंजन, 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 पूरा दुनिया ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 उसको एक भी जगह नहीं मिला अच्छा इंद्रिय भोग करने के लिए, तो फिर इस नवद्वारों वाले शरीर में प्रवेश किया उसने और इंद्रिय भोग करने लगा। ये द्वारों से बाहर जाके इंद्रिया क्या करते हैं? इंद्रिय विषयों के साथ संसर्ग करते हैं, ऐसे सुख दुख का सृष्टि होता है इस भौतिक जगत। लेकिन जो व्यक्ति इन नवी नवी सभी नौ द्वारों को नियंत्रण करता है वो क्या है? वो इस देह में सुख रह सकता है। नियंत्रण करना चाहिए, कभी कभी हम लोग पीछे का द्वार नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन और वहाँ पर वर्णन आता है भागवत में, वो सबसे बड़ा तकलीफ देने वाला द्वार है है ना। वो वश में नहीं है तो कैसे होगा स्थिति? बहुत तकलीफदायक हो जाता है ना। लेकिन तो ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ श्लोक है श्वेता सरोपनिषद में, नवद्वारे पुरे देही हमसो लीलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चराचरस्य च। तो जीव को शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है यह शरीर। नौ द्वारों, दो आंखें, दो नातुमें, दो कान, दो मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्ध जीव में, बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचाना अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी शब्द क्या है? वशी शब्द आता है ना वो श्वेतसर उपनिषद में, और यहाँ पर भी वशी है। तो हम सभी इंद्रियों को नियंत्रण करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब हम लोग इस देह में रहकर भी सुखी हो सकते हैं। तो जब तक हम लोग इस इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जिस जगत में कोशिश करेंगे या इंद्र तृप्ति के द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे तब तक हम लोग दुखी रहेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, आपको सुखी होना है तो क्या होना चाहिए? इस जगत में सुख होने का जो इच्छा है उसको त्याग देना चाहिए, तभी इस जगत में हम लोग सुखी हो सकते हैं। क्योंकि ये आत्मा को प्रसन्न नहीं करेगा ये इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोग जो है, इसलिए इसको नियंत्रण करके क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तभी हम लोग सुखी हो सकते हैं। तो अगला जो विभाग है कर्म के कारणों का दार्शनिक अध्ययन, वो हम लोग शाम को चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी प्रधान प्रधान ना
तो ये महत्त्व और प्रधान में क्या अंतर है, मतलब बहुत बता दे कि भौतिक प्रकृति तीन गुणों से बना है और इसको टेक्निकली प्रधान कहते हैं, तो प्रधान और महत्त्व कैसे क्या
महत्त्व क्या है, 24 तत्वों का अव्यक्त रूप है, समझ में आएगा, और प्रधान तीन गुणों का अव्यक्त रूप है, समझ में आएगा, तीन गुणों को प्रधान कहते हैं। महत्त्व में प्रधान एक तत्व है, समझ गए, 24 तत्वों में क्या है, एक तत्व है प्रधान, 23 हो गए, 24वां क्या है प्रधान है, इन सभी का अव्यक्त रूप क्या है महत्त्व, समझ आ गए, सबका सम टोटल सब कुछ मिलाकर महत्त्व तत्व बनता है, लेकिन प्रधान क्या है उसमें एक तत्व है, उसके द्वारा धीरे 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 सृष्टि होता है, प्रधान के द्वारा पहला चीज क्या है प्रधान, वो सूक्ष्म है, सभी 24 तत्वों में वो सूक्ष्म तत्व है, उसके द्वारा सभी 23 अन्य तत्व का सृष्टि होता है। इसलिए आप दोनों ले सकते हैं उसको, क्योंकि अंत में आरंभ कैसे होता है, वो प्रधान से होता है, है ना सृष्टि, तो इसलिए आप दोनों ले सकते हैं इसमें, इस सृष्टि में रह के भी वो मुक्त है, प्रधान या महातत्व में रह के भी, प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में रहने के कारण वो मुक्त है, पद्म पत्र के समान है, ठीक है। कहाँ पर बता रहे थे, हाँ ठीक है, अंतिम तात्पर्य है,
तो जैसे ये समाधि यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कई बार जैसे समाधि तो मतलब ये जो समाधि का स्थान है
समाधि क्या है, समाधि का अर्थ होता है कि वो दूसरे अध्याय के जो है 44वां श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोलते हैं उसको शब्दकोश से उल्लेख करते हुए वर्णन करते हैं उसको, समाधि क्या है, आत्मा के कार्यों में लग जाना, या कभी कभी कहते हैं कि परम सत्य में अपने आप को रत रहना, बिकमिंग एब्जॉर्ब्ड इन एब्सोल्यूट ट्रुथ। नाउ अलग अलग लोगों का जो साक्षात्कार है परम सत्य अलग अलग होता है, कोई ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, कोई परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, कोई भगवान का साक्षात्कार, उसके अनुसार समाधि का भी अर्थ अलग अलग होगा, जो ब्रह्म में हमेशा रत रहते हैं उनको वो भी समाधि में है, लेकिन उनका स्तर नीचे है, और उसमें के बाद परमात्मा में जो हमेशा रत उनके ऊपर ध्यान रखते हैं अष्टांग योगी परमात्मा के ऊपर ध्यान, वैसे समाधि में रहते हैं वो शांत रस है, लेकिन भक्त लोग भगवान की सेवा में हमेशा व्यस्त रहते हैं, उनका समाधि वो सर्वोच्च समाधि है, समाधि में भी स्तर हो सकता है, वो परम सत्य के परिभाषा के आधार पर उनके धारणा के आधार पर रहता है। नहीं, चतुर्भुज विष्णु जो हृदय में रहता है परमात्मा उसके ऊपर उन्होंने ध्यान करने के लिए प्रभुपाद जी उल्लेख किया है ना, वो पतंजलि योग सूत्र दूसरे अध्याय के 31वां श्लोक के तात्पर्य में विष्णु के ऊपर ही ध्यान करने के लिए बताते हैं योग सूत्र। और
भगवान ने यहाँ से जो अध्याय स्टार्ट किया है कर्मवाद और कर्म संन्यास दोनों को भेद करके कर्मयोग और भक्ति योग प्रभुपाद जी का
हमारे भक्ति के जीवन में भी इन दोनों का मिश्रण आ सकता है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस तरह से आ सकता है।
जैसे अपरिपक्व होकर हम लोग संन्यास ले लिया, ठीक है, भक्ति में वो भी है। भक्ति में कभी भक्ति योगी को कभी निंदा नहीं किया गया शास्त्र, त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणं भजे हरे, भजन न पक्वो तो पतन त्यतो हरि, यत्र खा भद्र बुद्ध मुष्य किम को आता। एक दृष्टिकोण से आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसमें कोई दोष, ये कर्म संन्यास और कर्मवाद का दोष नहीं रह सकते। आप टेक्निकली जानना चाहते हैं लेकिन उसका भावना हो सकता है, ऐसे ऐसा स्पिरिट हो सकता है भक्ति भक्ति में कृष्ण भाव। ऐसे एक सन्यासी ना, अभी हाल ही में उनका पतन हो गया, उन्होंने बताया मैं अपरिपक्व के उत्तर से मैंने सन्यास ले लिया, उन्होंने स्वयं बताया। तो वो हो सकता है कर्म संन्यास का भाव। और बहुत ये हो जाते हैं है ना, भक्त लोग अपने भौतिक सुविधा से पदवी से आसक्त हो जाते हैं, है कि नहीं। तो जीबीसी बनने का इच्छा या यू नो टेंपल प्रेसिडेंट बनने का इच्छा, जगह कैप्चर करने का इच्छा, ऐसे ऐसे है। लेकिन उसका मूल क्या है, सिद्धांत भगवान आंदोलन संस्थापक आचार्य को सेवा करना, उनके मिशन को आगे बढ़ाना, वो नहीं रहता है। कभी कभी इंटेंशन नहीं है लेकिन फिर भी वो ऐसे हो सकते हैं, उनका इंटेंशन नहीं है लेकिन आप योग्य नहीं है उस स्थान के लिए, तो क्या तो कर्मवाद का भावना है। और कुछ वो सिर्फ इस अध्याय में नहीं है, हमने जो वर्णन किया उसको वो आरंभ से ही हो रहा है, मतलब दूसरे अध्याय से ही आरंभ हो रहा है। ये सभी में फ्रिक्शन घर्षण हो रहा है भगवद गीता में। ये चार चीजों में नो
एक भक्त है जो सेवा कर रहा है, करते जा रहे हैं लेकिन ज्ञान ज्ञान के साथ सेवा नहीं कर रहा, दूसरे दूसरे ज्ञान दिए जाते सेवा
कई बार। हम भी श्रीपाद जैसे अपने शंकराचार्य का वस्त्र उनको भी श्रीपाद कहते हैं, श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, वैष्णव भी श्रीपाद पत्नी, तो क्या श्रीपाद
श्री ओके अंत में लक्ष्मी देवी का करता है, लेकिन श्री एक ऑस्पिशियस शब्द भी है, एक सम्मान पूर्वक शब्द भी है ना। सम्मान देने वाला एक शब्द है अंत में वो।